नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानागम्यत्परोऽपि किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निमित्त उपादान की चर्चा हमारी चल रही है। निमित्त और उपादान ये किसके नाम है? हाँ बोलो, हमारी किसकी चर्चा कर रही है? निमित्त क्या, निमित्त और उपादान ये क्या है, उसकी पूरी डेफिनेशन नहीं मैं पूछ रही हूँ, ये किसके नाम है, इसका मेरा प्रश्न है। हाँ बोलिए आप। कारण के नाम, क्या नाम है, किसके नाम है? कारण के, यानी निमित्त कारण और उपादान कारण, ये कारण के दो भेद हैं। तो कारण किसका होता है? तो कार्य का कारण कहलाता। तो कार्य यानी हमने क्या देखा था, आपको याद है जी भाई? कार्य किसको कहा हमने? कार्य यानी क्या? हाँ वो तो उपादान कारण हुआ, हम कार्य की बात कर रहे हैं। हाँ पर्याय, तो पर्याय को दूसरा नाम क्या देखा था हमने? हालत, दशा, अवस्था, कर्म, परिणाम, परिणमन, ये सारे नाम कार्य कहो ये सारे नाम को एक ही बात है। तो जब जब कार्य होता है या जहां जहां कार्य हो रहा है वहां वहां वो कारण के पूर्वक ही होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होगा। तो कार्य होगा या हो रहा है या हुआ था तो हम क्या कहते हैं कि उसका कारण क्या है, तो हमको कारण को हमें ढूंढना है। तो कोई भी कार्य होता है, किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय होती है, तो कार्य कितना लंबा चलता है भाई? हाँ प्रभु भाई, एक समय, तो कार्य भी एक समय का होता है, हमेशा हमें जो जो हम जिसको कार्य कहते हैं वो एक समय वाले पर्याय को हम कार्य नहीं, हम जो लौकिक में हम जिसको कार्य कहते हैं ना कि ये कार्य हुआ, तो हमने पुस्तक पढ़ा या ये उंगली हिली तो ये कार्य हमको लगता है, परंतु ये एक समय वाला कार्य है या एक द्रव्य की पर्याय है, क्या है? एक द्रव्य की पर्याय है ना, उंगली हिली, यहाँ कितने द्रव्य है? अनंत परमाणु है, एक जीव द्रव्य भी है, तो ये अनेक द्रव्यों की बहुत समयों की पर्याय हिली जुली है थी। और वो भी बहुत समयों की, असंख्यात समयों की मिलकर एक पर्याय, इसको हम कह रहे हैं क्योंकि समझाने के लिए, हमें समझना है कोई भी सिद्धांत तो दृष्टांत के द्वारा समझते हैं। तो हमने ये इसको कार्य कहा, उंगली सीधी थी, उंगली आड़ी हो गई, तो इसके कारण ढूंढने पड़ेंगे। हमें क्या लगता है, मैं जीव हूँ और मैं ही उंगली हिलाता हूँ, ऐसा ही हमने आज तक माना था। तो इसमें भी दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और दूसरे का नाम क्या था जी भाई? एक निमित्त नैमित्त ये क्या है? हाँ कार्य है, निमित्त कारण और दूसरा कारण कौन सा, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उपादान कारण। तो उंगली हिली तो इसमें हमको निमित्त और उपादान दोनों ढूंढने पड़ेंगे। हमने क्या हिलता हुआ दिखा, ये शरीर परमाणु, तो इसका उपादान कौन होगा? उंगली हिली तो इसमें जो अनंत परमाणु है, अनंत पुद्गल परमाणु है, वो उसका उपादान है। आत्मा का प्रवेश भी यहाँ से यहाँ हुआ, वो आत्मा उसका उपादान, जो आत्मा के प्रवेश मिले उसका उपादान आत्मा, जो अनंत परमाणु यहाँ से यहाँ हुए उसका कौन है उपादान? अनंत परमाणु स्वयं, ये हुआ त्रिकाली उपादान। हमने अभी उपादान के और भेद अभी देखे नहीं है, बाद में देखेंगे। यानी यहाँ जो एक कार्य हुआ कि अनंत द्रव्यों का मिलकर यहाँ कार्य चल रहा, और हमने आज तक क्या माना था? हाँ, मैंने उंगली हिलाई, देखो मैं जोर से बोलती हूँ, देखो मैं धीरे से बोलती हूँ। यानी ये जो अन्य द्रव्यों का परिणाम या परिवर्तन या पर्याय हम ख्याल में आती है, तो हमने मान लिया कि यह मेरा कार्य है, यही अपनी गलती हुई। तो अभी हाँ मिथ्या मान्यता हुई, तो इंदु बहन अब उंगली हिलाना के नहीं हिलाना, जानना कि ये जो कार्य हुआ वो अनंत परमाणुओं का कार्य है। अकेली मान्यता सुधारनी है, हम क्या नहीं अभी हमको उंगली नहीं हिलाना चाहिए, यानी मैं हिला सकता हूँ और अब नहीं हिलाऊंगा, यानी मान्यता वही सी रखी क्यों? हाँ ये ऐसे अब याद दे रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और फिर यहाँ देखिए, फिर सांस धीमे धीमे लीजिए, तो हो गया हमारा ध्यान। ऐसा यदि हम मानते हैं तो शरीर की क्रिया हम करते हैं ऐसी मान्यता कायम रख कर, ये हमारा ध्यान हुआ ऐसा मानते। यहाँ तो मान्यता सुधारनी है, तत्व का निर्णय यदि सही नहीं होगा, देखो जिसको ध्यान होगा वो भी ऐसे ही दिखाई देगा, क्योंकि तो भगवान की तरफ देखते तो वे भी ऐसे ही दिख रहे हैं, वे भी हाथ पर हाथ धरे हुए, उनकी भी दृष्टि अंतर्मग्न ऐसी दिख रही है, तो हम उनके खाली शरीर की तरफ देखकर हमें लगता है हम भी ऐसा बैठेंगे तो हमारा ध्यान हो जाएगा। यानी ये मान्यता रही नहीं, यदि ये मान्यता कायम है तो ये ध्यान भी आत्मा का कुछ नहीं होगा, ये नाक का ध्यान होगा या सांस का ध्यान होगा, सांस यानी श्वासोच्छ्वास का ध्यान होगा या शरीर का, अरे मैं झुक तो नहीं गया ना, अरे मैं झुक तो नहीं गया ना, यानी इसको ही मैं माना शरीर को, और मैं झुका क्या, मैं सीधा हूँ क्या, मैं सांस कैसा ले रहा हूँ, इसी की तरह वो अंदर उसके विकल्प चलेगा, क्योंकि अब स्वयं को अन्य द्रव्य का कर्ता मानकर उसकी सारी मान्य मिथ्या ही मान्यता चलती रहती है। जब तक मान्यता मिथ्या है तब तक तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने का सवाल ही नहीं। तो इसलिए हमेशा शास्त्र में बार बार मान्यता को सुधारने का उपदेश है। हम कोई क्रिया सुधारना चाहते वो भी अपनी तो है ही नहीं, जो अपना कार्य ही नहीं है, शरीर की कोई भी क्रिया अपना कार्य नहीं है, फिर भी हमारा प्रश्न क्या, हमें क्या करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए, ये मन का कार्य, शरीर का कार्य, भाषा का कार्य, ये सारा हम करते हैं ऐसा मानकर उसमें हम क्या करें, ऐसा प्रश्न आता है। शुरू में ऐसी उलझने होती है क्योंकि अनादि की मान्यता पड़ी ना, शरीर मन वाणी इसमें आत्मबुद्धि पड़ी है, तो ऐसे उलट सुलट प्रश्न आते हैं मन में, परंतु वो सही है क्या गलत है उसका भी अपने को निर्णय करना चाहिए, गलत है। तो ये जब हम सारा डिटेल में अभी सीखेंगे बढ़ेंगे आगे, तो ये सारी उलझने समाप्त तो होने वाली है, और कोई भी थोड़ी भी उलझन उसका बोझ माथे पर होगा तो उपयोग अपने आत्मा को नहीं पकड़ेगा। ये सीधी सरल बात है, ये सारा सहज है, उसमें कोई खींचतान है नहीं है, ये मार्ग इतना सरल और सहज है, इसको सहज मार्ग कहते हैं, क्योंकि आत्मा तो हम स्वयं है, तो उसमें कहीं अंदर जाना आना कुछ है नहीं है, अपना स्वरूप आज तक मालूम नहीं था, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते इसका पता नहीं था, इसलिए हम पर में ही कुछ करते हैं ऐसी मान्यता लेकर उसी के विकल्पों में हम राग द्वेष करते बैठे। तो यहाँ जब हम पता चलता है तो सहज ये सारे राग द्वेष से हम निवृत्त हो जाते, वो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं है। एक हम आए थे पेज नंबर 5 है ना, आपने मेरे इसमें 3 है, नई जो एडिशन है इसमें 3 नंबर का पेज है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ इस प्रकार मिला आप सबको, 6 नंबर है क्या, ऊपर से दूसरा पैराग्राफ, मिला सबको। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि उपादान उपादेय संबंध, देखो उपादेय शब्द आया, उपादेय शब्द किसके लिए हमने देखा था कल? हाँ प्रफुल्ल भाई, कार्य, उपादान ये कारण हुआ और उसका जो कार्य हुआ, उपादान की तरफ से हम बात करेंगे तो कार्य को हम उपादेय कहते हैं। निमित्त की तरफ से हम बात करेंगे तो कार्य को क्या कहेंगे भाई? नैमित्तिक। तो उपादान, उपादेय और नैमित्तिक, ये दो चीजें हुए कि नहीं हुई? हाँ क्यों? उपादेय ना द्रव्य है ना नैमित्तिक द्रव्य है। मैंने क्या पूछा? उपादेय और नैमित्तिक, ये दो बातें हैं कि एक बात है? एक बात है। क्या, कौन सी बात है? वो कार्य पर्याय में। तो उपादेय है वो कौन से द्रव्य की पर्याय है? अलग दूसरे द्रव्य की कि अपने द्रव्य की? अपने द्रव्य की। और जो नैमित्तिक है वो निमित्त भिन्न द्रव्य और नैमित्तिक उसका अन्य द्रव्य की पर्याय है। ख्याल में? जिसको उपादेय कहा था उसी को नैमित्तिक कहते हैं। उपादान की तरफ से देखेंगे तो हमने उसको उपादेय कहा, कार्य को ही, और निमित्त की तरफ से देखेंगे तो उसी कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। ये बराबर ख्याल में ले। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि उपादान उपादेय संबंध एवं निमित्त नैमित्तिक संबंध कारण कार्य संबंध के ही रूप है। यानी कार्य कारण कार्य संबंध कहो या उपादान उपादेय संबंध कहो, कारण कार्य संबंध कहो या निमित्त नैमित्तिक संबंध कहो, एक ही बात है। उसके दो रूप हो गए ना भी। पहले तो हमने अकेला इतना ही कहा कि कारण और कार्य, इतना ही देखा था। अब कारण में हमने दो भेद डाले, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो कार्य तो एक ही है, फिर भी उसको दो रूप में हमने देखा। निमित्त नैमित्तिक कारण कार्य जो संबंध था वो दो प्रकार का हुआ, कारण दो हुए और पर्याय जो हुई वो तो एक ही है, परंतु कारण की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो दो कारण कार्य संबंध हुए। कौन कौन से बोलो आप? कारण कार्य संबंध। अभी कारण में दो कारण है तो एक एक को लेना। उपादान को लेंगे तो कैसे कहेंगे? उपादान उपादेय संबंध, और निमित्त को लेंगे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध। ऐसे दो संबंध है, यानी कारण कार्य संबंध हमने एक देखा था, उसके दो रूप देखे। कौन से? निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय। यहाँ तक हम समझे ना? तो हम आगे बढ़ेंगे। कहीं भी कुछ नहीं समझना तो फिर पूछना। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं समझता औरों को समझता है, मैं कैसे पूछूं? बिल्कुल नहीं। जिसको नहीं समझा वो समझ जाएंगे, जिसने समझा उसका पक्का हो जाएगा। हाँ, उपादेय किसकी तरफ से देखेंगे? तो उपादान की तरफ से, उपादान की अपेक्षा से पर्याय को क्या कहा? उपादेय। नैमित्तिक किसकी अपेक्षा से कहा? निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक कहा। देखो, एक लड़की है, माँ की अपेक्षा से उसको बेटी कहा और उसके सास की अपेक्षा से उसको बहू कहा, है ना? कहाँ से हम उसकी बात कर रहे हैं? वैसे कार्य तो एक ही है, उपादान की ओर से हम उसकी बात करेंगे तो उसका उपादेय है, उपादान का वो उपादेय है, और निमित्त की तरफ से बात करेंगे तो वो निमित्त का नैमित्तिक है। क्या लाया? देखो, इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि उपादान उपादेय संबंध एवं निमित्त नैमित्तिक संबंध कारण कार्य संबंध के ही रूप है, यानी उसके दो प्रकार है, जो प्रत्येक कारण कार्य संबंध पर अनिवार्य रूप से घटित होते हैं। यानी जहाँ जहाँ कार्य घटता है वहाँ कारण है ही, और जहाँ जहाँ कारण कार्य है वहाँ दोनों ही प्रकार के कारण होते हैं। यानी जब जब कार्य होगा तब तब उपादान कारण भी होगा ही होगा और निमित्त कारण भी वहाँ उपस्थित होगा। निमित्त से कार्य नहीं होता फिर भी उसकी उपस्थिति होती है, इसीलिए तो निमित्त की चर्चा भी इतनी जिनागम्य की। निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती ही है और वहाँ उपादान तो उस द्रव्य को ही कहते हैं जिसमें से वो पर्याय प्रकट हुई है। इस प्रकार अनिवार्य ने होती है, डेफिनेटली होती है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य नियम रूप से उपादेय भी है और निमित्तिक भी है। देखो हमने अभी देखा था जो जो कार्य हुआ उसमें दो कारण होते ही होते हैं, उपादान भी होता है निमित्त भी होता है। उपादान की तरफ से उसी कार्य को उपादेय कहते हैं, निमित्त की तरफ से निमित्त की अपेक्षा उसी कार्य को हम नैमित्तिक कहते हैं। यानी जो जो प्रत्येक पर्याय होती है, प्रत्येक जो जो कार्य होता है वो उपादेय भी है और नैमित्तिक भी है। जो जो पर्याय हुई, सम्यक दर्शन की पर्याय क्या है, नैमित्तिक है क्या उपादेय है, दोनों कोई भी आप पर्याय। अभी अब कल हमने देखा ना घड़ा बना, वो उपादेय है कि नैमित्तिक है? हाँ बोलो भाई, दोनों है। ऐसा लेना कि जो जो कार्य होता है वो दोनों ही होता है। इसी का अर्थ होता है, इसी का क्या अर्थ हुआ कि जब जब कार्य होता है वो उपादान कारण भी है और नैमित्तिक भी कारण है। और जो कार्य हुआ, इन्हें कार्य हुआ ना, इसके दो कारण, एक कार्य था उसके दो कारण, एक उपादान और एक निमित्त। उपादान की दृष्टि से इसको उपादेय कहा, निमित्त की दृष्टि से इसी को नैमित्तिक कहा। यानी जो जो कार्य है वो उपादेय भी है और नैमित्तिक भी है। ठीक, यहाँ तक तो आ गए हम। देखो आगे, उपादान की अपेक्षा उपादेय है और निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक है। एक शब्द हमने सुने नहीं ना, क्योंकि अटपटे लगते हैं, उसको बोलने में जरा हम गड़बड़ करते हैं। कोई बात नहीं, उसको समझना अधिक महत्व का है। कोई उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी फिर से दोबारा बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता, परंतु समझना महत्व की बात। ऐसा क्यों कहते हैं, भले आपको उसको बताने में तकलीफ होती हो, बार बार सुनने से वो आसान हो जाता है। इसीलिए हम दकात स्वयं मैं भी बोल रही हूँ और आपसे भी प्रश्न करती हूँ बार बार। इसका अर्थ ये नहीं कि हमको समझना नहीं है, समझते नहीं है, और आप क्यों इतना प्रश्न पूछते, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते। अभी कोई आगे जाने की चिंता नहीं है, ये प्रत्येक कार्य सुनिश्चित अपने समय पर होने वाला है। क्यों कि हम जल्दी पढ़ाएंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि द्रव्य या गुण उपादान कारण है, जैसा कि सम्यक दर्शन रूप कार्य के उदाहरण में बताया गया है, सम्यक दर्शन रूप कार्य हुआ, वहाँ किसको हमने देखा था उपादान कारण? हाँ भाई आप बोलिए, श्रद्धा गुण, जीव द्रव्य कहो या श्रद्धा गुण कहो, या जीव द्रव्य का श्रद्धा गुण, श्रद्धा गुण। क्या कहते हैं कि एक प्रश्न क्या उठता है कि द्रव्य और गुण को हमने उपादान कारण कहा, तो विवक्षित कार्य निरंतर उत्पन्न होते ही रहना चाहिए। हमने क्या कहा, जीव द्रव्य या श्रद्धा गुण वो उपादान कारण है और सम्यक दर्शन कार्य हुआ वो कार्य है, उसका उपादेय है। तो श्रद्धा गुण कब से है, अनादि से है, तो सम्यक दर्शन भी अनादि से क्यों नहीं हुआ, प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है ना। मिट्टी उपादान कारण है और घड़ा बना ये उसका कार्य है, तो मिट्टी तो पड़ी थी, घड़ा अब तक क्यों नहीं होना, हाँ निमित्त नहीं मिला। इसलिए अनादि से हमारी मान्यता ऐसी ही है कि निमित्त नहीं मिला इसलिए कार्य नहीं हुआ है ना। कभी वो मान्यता सही है कि गलत है, इसको हम कटो लेंगे, बराबर ना। हमें क्या लगता था कि दिव्य ध्वनि भगवान की क्यों नहीं खिली, क्योंकि सामने कोई जीव उपस्थित नहीं था, तो हमने तो ऐसे ही माना था कि गंधर आए, इंद्रभूति आए, तब उनकी वाणी खिली, तो निमित्त नहीं था, तो उसको पहले क्यों नहीं लाया इंद्र ने, 66 दिन तक वो क्यों रुका, गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले उदित ज्ञान से जाना था कि ये बालक यहाँ जन्मने वाला है, तो वहां तो सारे रत्न बरसाए, और एक दिन वाणी नहीं छूटी, दो दिन नहीं छाटी, तब तो क्यों अवधि ज्ञान नहीं लगाया, तो क्यों नहीं जाना उन्होंने कि कौन ऐसा जीव होगा जिसको मैं यहाँ ले आऊ, तो 66 दिन तक क्यों रुका गया? ऐसे प्रश्न हम उठाएंगे तो उसका जवाब हमको मिलना चाहिए, तो उसका सही जवाब हम इसमें ढूंढेंगे। तो विवक्षित कार्य निरंतर उत्पन्न होते ही रहना चाहिए, क्योंकि जब कारण उपस्थित है तो कार्य भी होना ही चाहिए, है ना? तो हमने देखा कि उपादान को अगर हम अकेला द्रव्य को उपादान कहेंगे तो हम इस पर निष्कर्ष पर आ सकते हैं, अरे द्रव्य तो हमेशा से था तो क्यों नहीं हुआ, तो हाँ जरूर ही निमित्त के बिना उसका कार्य अटका था, बराबर ना? आपने जो कहा नहीं गलत है कि नहीं, अभी हमने कहा देखा है, अभी हमने कहा उसको सिद्ध किया कि गलत है, अभी तो हम रखेंगे कि त्रिकालीय उपादान से तो कार्य हमेशा होता रहना चाहिए था, यदि नहीं होता है तो और कुछ अंदर कारण होना चाहिए, इसको हमको ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए। यदि उसके उत्तर में यह कहा जाए कि उपादान कारण तो द्रव्य या गुण होने से सदाकाल ही उपस्थित रहता है, देखो आपकी बात आई, पर निमित्त कारण के न होने से कार्य नहीं हुआ, जब निमित्त कारण मिलेगा तब कार्य संपन्न हो जाएगा, यदि ऐसा मानेंगे ना, ऐसा मानने पर निमित्त कारण ही नियामक कारण ठहरेगा, नियामक यानी वो कार्य का निश्चित करने वाला, कार्य को करने ही वाला कौन ठहरा? निमित्त, हाँ वही होल एंड सोल हो गया, हाँ कंट्रोलर उसका कार्य का, क्योंकि उसके होने या न होने पर ही कार्य का होना या नहीं होना निर्भर करेगा, और हम तो आज तक ऐसा ही मानते आए थे, है ना? देखो इस आपत्ति से बचने के लिए यदि यह कहा जाए कि कार्य की उत्पत्ति में तो दोनों ही कारणों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो हम कहेंगे भले ही दोनों कारणों की उपस्थिति अनिवार्य हो, यानी भले दो कारण है परंतु वो निश्चित कौन करेगा? जैसे बच्चे घर में क्या बल देखते हैं, अरे माता पिता दोनों हैं, दोनों की परमिशन लेनी पड़ती है, परंतु माँ तो चलो ढीली डाली है, पिताजी की परमिशन निकाले तो हो जाएगा काम, तो नियामक कौन होगा घर में? कंट्रोल किसका करता है? तो बच्चे जानते ना माँ का कंट्रोल ज्यादा है, वो माँ के पास अपनी बात ले जाते हैं, तो वैसे यहाँ क्या करना पड़ेगा कि दोनों ही कारण है पर उसमें से मुख्य प्रमुख कौन है, कंट्रोल करने वाला कौन है, तो निमित्त को ही मानना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं कि दोनों कारणों की उपस्थिति अनिवार्य हो पर नियामक कारण तो निमित्त ही रहा, क्योंकि उसके होने पर कार्य होता है और नहीं होने पर कार्य नहीं होता, क्योंकि देखने में तो ऐसी ही दिखाई देता है, हमारी चमड़ी के आंख से तो ऐसा ही दिखने में आता है, कल हमने देखा था कि यहाँ तो आगम चक्षु, हम आगम चक्षु से देखेंगे, ये चर्म चक्षु से नहीं देखेंगे। आगम चक्षु क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान ने अपने दिव्य चक्षु से जो जाना है, केवल ज्ञान से जो जाना है वो आगम में लिखा है, यदि हम आगम के आधार से इसकी तरफ देखेंगे तो हमें सही कारण का पता चलेगा, क्योंकि यदि हम ऑर्डिनरी हमारे लौकिक हमारे नियम वहां लगाएंगे तो ऐसा ही लगता है, अरे निमित्त जब तक नहीं आता तब तक कार्य कर होता हुआ दिखता ही नहीं है, इसलिए हम आज तक पराधीन वृत्ति में ही पड़े रहे कि हाँ हमें भी कार्य करना है, हमारा कुछ कार्य होना है, तो निमित्त नहीं आए तो हमारा कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, है ना? कभी आगम की चक्षु द्वारा हम देखेंगे इसको, देखो हाँ कल आपने देखा था ना निमित्त कारण किसको कहते, कल हमने डेफिनेशन देखी थी, याद है किसी को? हाँ देवेंद्र बोलो, बोलो पुस्तक की भाषा किसको याद है? कार्य रूप, जो स्वयं कार्य रूप, ऐसा ले और कौन बोल सकेगा? आप प्रफुल्ल भाई बोल सके? हाँ निमित्त कारण कहते या निमित्त कहते, दीपाली बोलो आप। निमित्त कारण कहते, विनोद भाई आप। कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है वो भी उपचार है। हम क्या कहते हैं, पहले निमित्त जुटाएंगे, ऐसा मानते ना कि निमित्तों को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारा कार्य होगा, परंतु यहाँ क्या कार्य हुआ ही नहीं तो काहे का निमित्त। तब तक उसको हम निमित्त भी नहीं कह सकते जब तक कार्य नहीं हुआ, और निमित्त नाम के कोई पदार्थ नहीं होते। और हमारे मैं द्रव्य हूँ, मुझ में गुण कितने हैं, दरेक द्रव्य में गुण कितने हैं, अनंत है, और उनकी पर्याय कब होती है, 8 महीने के बाद, हर समय, मैंने हर समय में यहाँ कितने कार्य हो रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य में अनंत। ये शरीर की बात नहीं कर रही हूँ, अकेले आत्मा की बात कर रही हूँ। तो जीव द्रव्य में अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक एक समय में हो रही है, और जो समय हमारे पकड़ के बाहर है, असंख्यात समयों तक कोई चले तो हमारे क्या नहीं आता है ना। जिस समय कार्य होता है उस समय तो हमारे ज्ञान में आता नहीं है, हमें क्रोध भी आया तो असंख्यात समयों के बाद पता चलता है। देखो यहाँ कोई चीज ऐसे रते करते करते तेल उड़ जाता है, जलता है, जल जाता है, देख तो रहे हैं यानी दिखाई तो दिया, परंतु वो वहां सेंसेस कमाने में कितना टाइम चला गया, 5-10 सेकंड के बाद अरे वो जलने लगता, पता ही नहीं चलता है। तो ये अपना क्षोभ ज्ञान इतना कमजोर है कि कोई भी पर्याय होने के पश्चात असंख्या समयों के बाद ख्याल में आता है। तो हमको कार्य करना है, तो जो हो चुकी तब हमारे ख्याल में आए, तो उसके लिए निमित्त कैसा लाएंगे, वो तो हो चुका। तो अनंत कार्यों के लिए अनंत निमित्त होंगे तो किस किस को जुटाएंगे, श्रद्धा गुण के लिए कि ज्ञान गुण के लिए कि चारित्र गुण के लिए, किसका कारण ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। ख्याल आता है, निमित्त ये जुटाए नहीं जाते, वो सहज होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज है। देखो यहाँ समझो 10 द्रव्य है और वो 10 द्रव्यों की अपनी अपनी पर्याय चल रही है। अभी 10 द्रव्यों में जिसकी पर्याय जिसके कार्य में अनुकूल दिखाई दे उसको हम निमित्त कहेंगे। वैसे तो दरेक द्रव्य अपने स्वयं के लिए उपादान है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में कार्य हर समय चल रहा है, तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने पर्याय का उपादान है ही। अब जो पर्याय किसी अन्य द्रव्य के पर्याय में हमें अनुकूल दिखाई दे, दोनों हाँ एक जैसी हो रही है, इसके इसमें इसमें कोई कारण कार्य दिख रहा है, तो हमने उस पर आरोप किया कि इसको ये निमित्त है और ये उपादान है, ये उसका निमित्त है। ख्याल है ना। तो निमित्त नाम का कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिस द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में अनुकूल दिखे उसको हम निमित्त कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक द्रव्य अपना अपना उपादान कार्य कर रही, उपादान है वो अपना अपना उपादेय कार्य कर ही रहा। अब सहज रूप से ऐसा बनता है कि प्रत्येक द्रव्य की अपनी पर्याय किसी अन्य द्रव्य के पर्याय में अनुकूल दिखे तो उसको हम निमित्त भी कहते हैं। यानी प्रत्येक द्रव्य जैसा उपादान है वैसा वो निमित्त भी है अन्य किसी के लिए, द्रव्य रूप से नहीं, उसकी जो पर्याय होगी वो पर्याय किसी अन्य पर्याय में निमित्त होगी। तो इसलिए हम 6 द्रव्य देखते हैं, तो 6 द्रव्यों में कहा निमित्त नाम का कोई द्रव्य नहीं है। वैसे तो उपादान भी किसी द्रव्य का नाम नहीं है, परंतु प्रत्येक द्रव्य स्वयं उपादान है। वैसे प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय है वो अन्य जिस किसी अन्य पर्याय में निमित्त दिखे अनुकूल दिखे उसको हम निमित्त कहें। यानी वो प्रत्येक द्रव्य उपादान है ही और उसकी पर्याय निमित्त भी है अन्य पर्यायों के लिए। जैसे धर्म द्रव्य निमित्त है कि उपादान है, बोलो दीपक। धर्म द्रव्य क्या काम है उसका, उसका हम विशेष गुण क्या देखते हैं धर्म द्रव्य का, गति हेतुत्व, गति हेतु यानी निमित्त, गति में निमित्त। तो धर्म द्रव्य उपादान है क्या निमित्त है, विनोद भाई? हाँ निमित्त है, तेज जीवन के दिन मित्र, आप क्या कहते हो? धर्म द्रव्य में भी अनंत गुण है और वो अनंत गुण का परिणमन हर समय चल रहा है। तो धर्म द्रव्य स्वयं उपादान है और उसका अपना अपना जो परिणमन है वो उसका उपादेय है। अभी धर्म द्रव्य ने अपने में जो परिणमन किया वो जीव द्रव्य के और पुद्गल द्रव्य के गमन में अनुकूल दिखा, तो हम क्या कहते हैं कि धर्म द्रव्य जीव के लिए निमित्त है ना। परंतु वो अपने लिए क्या है? अपने स्वयं के पर्याय के लिए उपादान है। ऐसे हरेक में घटा ले, जीव द्रव्य स्वयं का परिणमन करने में उपादान है, उसका अपने अपने पर्यायों का उपादान है। अब समझो हम गुरु को लेंगे तो वो शिष्य को वहां देशना में वो निमित्त हुआ, गुरु का जो उपदेश है उसकी जो वाणी वो भी निमित्त भी है ना। गुरु का और वाणी का भी वहां निमित्त निमित्त समय, वो वाणी का और शिष्य का भी वहां उसके ज्ञान का वो भी निमित्त निमित्त समय। तो हमने कहा कि गुरु से ज्ञान हुआ शिष्य को, तो गुरु का जो उपदेश है वो शिष्य के ज्ञान होने में हमने उसको उसका निमित्त है। पर गुरु स्वयं के लिए क्या है? गुरु में भी अपने में कुछ कार्य हो रहा है कि वो शिष्य का ही कार्य कर रहा है? हाँ, वो उपादान है, स्वयं का उपादान और पर के लिए हो सकता है, जिसका कार्य होगा उसके लिए निमित्त, जिसका नहीं होगा उसके लिए निमित्त नहीं है। इसलिए हम गुरु को निमित्त कब कह सकते हैं? जब शिष्य में वो ज्ञान रूप पलट परिणमने का कार्य हुआ तब हम गुरु को कह सकते वो निमित्त है। इस जो देव गुरु शास्त्र निमित्त कहते हैं वो सामान्यता ऐसे दिखने में आता है कि बिना उनके यहाँ कार्य होता नहीं, बिना देशना के सम्यक दर्शन का कार्य नहीं होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, वो देशना कब कहाँ से मिलती है? तो मुख्य देने वाले तो भगवान है अरिहंत, आप से जिसको कहा तीर्थंकर देव, जो ओमकार ध्वनि में सारा आगम आ जाता है। गुरु की जो उसको ग्रहण करके स्वयं भी परिणमन करते हैं और औरों को भी उपदेश देते हैं, और जो उन्होंने लिख रखी है वाणी जो हमें अभी शास्त्र रूप से उपलब्ध है वो शास्त्र। इसलिए हम उनको आदर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मोक्ष मार्ग में ये निमित्त होते हैं। कब निमित्त होते हैं? हम स्वयं उस रूप परिणमन करें तो सामने इनकी उपस्थिति होती है। तो इसको देखकर हमें क्या लगता है? नहीं, देव गुरु या शास्त्री हमारा भला कर देंगे। तो यदि वे भला करेंगे तो समोचरण में तो इतने सारे जीव बैठे हैं, तो सभी को तो वहां का वहां केवल ज्ञान होना चाहिए। कोई तो केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रकट करते, कोई मुनि हो जाते, कोई है वो तो श्रावक होते पांच गुण संगति, कोई तो मिथ्या तो में से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते, और कोई मारीची या वो मत्सरी गोसा जैसे विरोध करके और पाखंड मत की स्थापना करने के लिए निकल चलते बाहर समोचरण छोड़कर। वो मालूम है ना आपको कथा, वो मत्सरी या मंगली घोषाल की कथा थी, वो पार्श्वनाथ के गणधर का डायरेक्ट शिष्य था और महावीर के समोचरण में रोज आते थे कि अभी यहाँ दिव्य ध्वनि छूटेगी, और वो सुनने के लिए तो आते थे। एक दिन हुआ, दो दिन, ये 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी, तो इंद्र जाकर वो इसको इंद्रभूति गौतम को ले आए, गौतम गंधर जिसको हम कहते, तो तब वाणी खिरी। तो उनको इतना गुस्सा आया कि वो समोचरण छोड़कर निकल पड़े। इतने दिन तक वो क्या रोज क्या भावना थी कि मैं दिव्य ध्वनि सुनूं, और बाद में ऐसा गुस्सा आया कि अरे मेरे से भी कोई ज्यादा जानकार है क्या, वो तो अन्य मती है, मैं तो जैन हूँ, दिगंबर जैन हूँ, वहां तो श्वेतांबर थे ही नहीं, तब से 500 साल बाद हुए, मैं तो जैन हूँ और ये अन्य मती आकर अभी इसके लिए वाणी खिरेगी। तो इसको बहुत गुस्सा आया और जाकर उसने अन्य पाखंड मतों की स्थापना कर दी। कहाँ से बात निकली थी? हाँ, समोचरण में दिव्य ध्वनि से ही अगर कार्य होता है तो सब में तो समान होना चाहिए, तो निमित्त से कार्य होता नहीं, यही सिद्ध होता है ना। कार्य होता है तभी उसको निमित्त कहते हैं, अन्यथा नहीं। यानी निमित्त है कि कोई बैठे नहीं वहाँ, हाँ चलो वहाँ निमित्त है बैठा हुआ, समोसर में डिबे धोनी निकल रही है, चलो निमित्त के पास तो हमें मिल जाएगा समय दर्शन। क्योंकि शास्त्र में तो ऐसे निमित्त के कथन बहुत मिलेंगे। जब जब क्षायिक समय तो होता है तब तक कहाँ होता है, केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है, केवली के पाद मूल में। तो ऐसा जब है तो हरेक को क्षायिक समय तो होना चाहिए। यदि उन्हीं के कारण क्षायिक समय तो होता होगा, निमित्त है, उपस्थिति है और उनके उपस्थिति में ही जीव को क्षायिक समय दर्शन होता है। परंतु यदि हमने उसी को कर्ता माना तो सबको होना चाहिए था। जो जीव स्वयं क्षायिक समय स्वरूप पुरुषार्थ करता है उसको तीर्थंकर की उपस्थिति में होता है, ऐसा नियम। हमने क्या मान लिया, तीर्थंकर के कारण ही हमको क्षायिक समय होगा, तो हम कहाँ निकले ढूंढने, तीर्थंकर की ओर। यहाँ यहाँ कुछ नहीं कार्य करना चाहते, सारा बाहर से ही मेरा कार्य होगा, तो निमित्त की ओर हम चले पड़ते। ये नियामक कारण कौन है उसकी चर्चा चल रही थी। अरे भाई मीना, कार्य का नियामक कारण कौन है यह जानने के पहले, यानी कार्य होता कौन से कारण के है, ये उसका कंट्रोलर कारण कौन है, ये जानने के पहले हम उपादान निमित्त को उनके भेद प्रभेदों सहित, भेद यानी डिविजन, प्रभेद यानी सब डिविजन, यानी जैसे हमने कारण के दो भेद देखे, उपादान और निमित्त, फिर ये भेदों के भी भेद कहेंगे तो उसको कहेंगे प्रभेद। तो उसके भेद प्रभेदों को अच्छी तरह समझ तो ले, फिर इस विवाद में उलझे क्योंकि नियामक कौन है कारण, क्योंकि उपादान तो हमेशा से था और निमित्त अभी आया तो कार्य हुआ ऐसा दिख रहे हमको, ऐसा देखने में आता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि उपादान भी बहुत प्रकार के होते, तो उसको तो पहले देख ले। तो ये जो हमें प्रश्न उठता है कि कार्य क्यों नहीं हुआ, उपादान तो था पर कार्य क्यों नहीं हुआ, इस उलझन से हम पार पड़ेंगे। देखो हो सकता है हाँ, उत्तर भेद ही प्रभेद कहलाते। हो सकता है कि उपादान निमित्त के भेद प्रभेदों के स्पष्टीकरण से यह प्रश्न सहज ही सुलझ जाए। देखो कोई भी बात, जब हम किसी चीज का ज्ञान होता है तो हमारे मन में जो प्रश्न उठते वो समित हो जाते हैं। जब तक उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है तो बहुत उलझने पैदा होती है, और उसके बारे में जानकारी हो जाती है तो हमारा भय शंका या उसकी उलझन सारी समाप्त हो जाती है। वस्तुतः बात तो यह है कि उपादान निमित्त के भेद प्रभेदों के सम्यक ज्ञान में ही, यानी सही जानकारी जब हो जाती है हमको, तो इस प्रश्न का उत्तर समाहित है। यानी इस प्रश्न का उत्तर कि हम उसके भेद प्रभेद देखेंगे ना, हमने यहाँ लिखा है उपादान है निमित्त है, उपादान के भेद है फिर निमित्त के, तो इसको समझने से सारे हमारे प्रश्न सुलझ जाएंगे। समाहित यानी उसमें इंक्लूडेड है, हाँ उसका प्रश्न का उत्तर उसी में समाया हुआ है। समाया हुआ है, समाया हुआ उसी को समाहित ऐसे कहते हैं। अतः सबसे पहले उनके भेद प्रभेदों की चर्चा ही अपेक्षित है। जैसे हमने कारण दो प्रकार के देखे थे, उपादान और निमित्त, अब निमित्त भी दो प्रकार के, एक त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। त्रिकाली यानी कायम रहने वाला और क्षणिक यानी एक समय वाला, एक समय वाला हम कहते हैं ना, क्षण क्षण भर हो जाते हैं, क्षण में हो जाता है कार्य। तो ऐसे एक क्षण भर जो टिकता है वो, और एक कायम वही का वही टिकने वाला ऐसा। तो उपादान दो प्रकार का, कौन से दीपाली, कौन से दो प्रकार, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, कौन से दो कहे भाई। हाँ उसके आगे उपादान ने, हाँ कायम टिकने वाला है वो कैसा है, त्रिकाली है। अब क्षणिक कैसा है उसकी हमने चर्चा नहीं की। दो कौन से उपादान है बोलो, हाँ और त्रिकाली उपादान, आप कहो बे
बिल्कुल भाई,
ये दो प्रकार हुए उपादान के, समझ कहो बराबर। ये उपादान दो प्रकार का, विकाली उपादान और क्षणिक उपादान। निमित्त भी दो प्रकार का, एक उदासीन और एक प्रेरक। कौन से दो? उदासीन ऐसे मुंह लटका हुआ ऐसा नहीं, क्यों? एक उसका अर्थ बाद में देखेंगे। उदासीन और प्रेरक, उसके अलग टाइप से भी क्लासिफिकेशन होता है, यानी अलग दो प्रकार भी कह सकते हैं, अंतरंग और बहिरंग। क्या कारण था उसका? दो भेद प्रेरक और ऐसे, चार भेद नहीं है, भेद दो ही है, या तो उदासीन और प्रेरक कहो या अंतरंग बहिरंग कहो। ऐसा नहीं कि उदासीन है वो अंतरंग है और बहिरंग है वो प्रेरक है, ऐसा भी नहीं है। अलग ही प्रकार के क्लासिफिकेशन, यानी अलग अलग पद्धति से उसको हमने विभाजित किया नहीं है। उदासीन को अंतरंग कहना वो गलत है, वो अंतरंग कहते किसको है वो बाद में हम देखेंगे, अभी तो हम नाम जरा याद करेंगे। अश्रुबेन आप कहो, निमित्त के प्रकार। हाँ, या अंतरंग और बहिरंग आप कहो। इंदुबेन, हाँ बराबर है। हाँ आप कहिए, निमित्त के दो प्रकार। उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त, या अलग टाइप से अगर बोलने तो अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। तेजुबेन आप कह सकोगे? हाँ बोलना। निमित्त के दो प्रकार, हाँ हाँ प्रेरक निमित्त, या दूसरी तरह से बराबर अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, आपको ख्याल में आए? उदासीन या प्रेरक, अंतरंग बहिरंग, बहिरंग ऐसे अलग प्रकार है। अभी इसकी डेफिनेशन बताते हैं। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, उस द्रव्य या गुण को उस कार्य का विकाली उपादान कारण कहते हैं। कल हमने खाली इसको उपादान कारण बताया था, हमने कल इतना ही कहा था कि द्रव्य और गुण को उपादान कारण कहते हैं। आज क्या सीखे? वो त्रिकाली उपादान है, यानी क्षणिक उपादान कोई अन्य होना चाहिए, जिसकी बात हम सीखेंगे। तो त्रिकाली उपादान क्या हुआ? यानी द्रव्य और गुण तो है ही अनादि से, त्रिकाल का सीखने वाले हैं, तो त्रिकाली उपादान जीव द्रव्य का ज्ञान कहो या जीव द्रव्य स्वयं कहो, वो त्रिकाली उपादान हुआ। जो पर्याय हर समय जानना 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 चलती है, वो कार्य है, वो त्रिकाली उपादान का वो उपादेय है। तो हमने पहले प्रश्न पूछा था कि मिट्टी पड़ी है तो कार्य क्यों नहीं होता, हर समय घड़ा क्यों नहीं बनता? तो कहते कि मिट्टी वो त्रिकाली उपादान है, तो क्षणिक उपादान और कुछ अलग होना चाहिए, जिसको हम देखेंगे बराबर। तो त्रिकाली उपादान किसको कहते हैं साथनी जी? हाँ नहीं, यानी किसको कहना, द्रव्य या गुण को? द्रव्य और गुण को त्रिकाली उपादान कहते हैं, दोनों को। ख्याल में आया? मिट्टी ये तो समझाने के लिए उदाहरण लिया है। हाँ आइदर दोनों भी हो सकते हैं। देखो क्या लिखा है, जो द्रव्य या गुण, जिसकी बात हम कर रहे हैं, गुण की बात करेंगे तो गुण को त्रिकाली कहेंगे, तो पूरे द्रव्य की पर्याय कहेंगे तो पूरे द्रव्य को कहेंगे। द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, यानी जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमता है, उस द्रव्य या गुण को उस कार्य का त्रिकाली उपादान कारण कहते हैं। तो यहाँ बुखार आया, कार्य हुआ ना, उसका त्रिकाली उपादान कारण कौन है? हाँ? वो कार्य हुआ ना, पर कार्य हुआ तो उसका टेम्परर हमेशा रहना रहा कौन है? कार्य तो टेम्पररी होता है और कारण उसका, हाँ अवगुण कहना है तो स्पर्शक यानी पुद्गल द्रव्य या पुद्गल का स्पर्श गुण वो त्रिकाली उपादान कारण और कार्य हुआ स्पर्श गुण की विशिष्ट पर्याय हुई गर्म हुई ना तो वो कार्य हुआ वो उसका त्रिकाली उपादान का वो उपादेय है। अब क्षणिक उपादान देखेंगे यानी अभी तो हमें तो पता चला जिसको अभी तक हम उपादान उपादान कहते वो त्रिकाली उपादान है तो त्रिकाली उपादान तो कार्य का नियामक नहीं होता कौन से द्रव्य में कार्य हो रहा है उसको बताएगा। जैसे सम्यक दर्शन ये कार्य होना है तो वो कहाँ होगा उत्तल द्रव्य में होगा कि धर्म अधर्म त्रिकाली उपादान तो क्षणिक उपादान को हमें देखना पड़ेगा वो क्या चीज है। तो क्षणिक उपादान कारण दो प्रकार का होता है क्षणिक में भी दो भेद। अभी इसके यहाँ के नाम पढ़ने के पहले मैं अपनी सादी भाषा में बोलती हूँ तो कार्य हुआ ना समझो 10 नंबर की पर्याय हुई तो जब 10 नंबर के उत्पाद हुआ उसी समय क्या हुआ 9 नंबर के पर्याय का व्यय हुआ बराबर ना। तो 9 नंबर की बाद कौन सी आएगी 11वीं आएगी कि 12वीं आएगी पर्याय 10 नंबर की ही आएगी और 10 के पहले कौन सी होगी पहली होगी क्या दूसरी होगी 9वीं ही होगी। तो 9वीं पर्याय को पूर्व पर्याय अब यहाँ की भाषा में क्या है अनंतर पूर्व यानी इमीडिएट प्रायर इमीडिएट नेक्स्ट नहीं इमीडिएट प्रायर यानी जो पर्याय हुई उसके एक समय वाली पूर्व पर्याय अगली आप गुजराती में क्या कहेंगे तो ये जो इसको कहते हैं अनंतर पूर्व अभी ये शब्द नया है और उसको बोलने बोलने में हम जरा अटपटेंगे फिर भी रोज सुनेंगे रोज बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं पूर्व पर्याय को अनंतर पूर्व और वो कितने टाइम रखने टिकने वाली है क्षणवर्ती क्योंकि बहुत समयों के पर्याय नहीं लेना है एक एक पर्याय लेना एक पूर्व पर्याय लेना तो उसको कहते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ये भी उपादान कारण है यानी क्षणिक उपादान कारण है। क्षणिक उपादान कारण के दो भेद अंतर पड़े बिना यानी उसके लगती हुई पहली पर्याय अभी ये एक पर्याय है और ये एक पर्याय है ये अभी हम इसको देख रहे हैं ये कार्य हुआ तो ये कार्य होने के पहली पर्याय अंतर पड़े बिना नहीं तो अकेली पूर्व पर्याय कहेंगे तो पूर्व की कोई भी पर्याय देखना पड़ेगा है ना इसलिए अनंतर पूर्व का देखो 1 2 3 4 5 6 ये सारे पर्याय हो रही है क्रम से तो छठी पर्याय के लिए अनंतर पूर्व कौन सी पर्याय है 5 नंबर की है अनंतर पूर्व इसके बीच में कोई गैप नहीं है गैप नहीं इसलिए इसको कहा अनंतर पूर्व वो कितने क्षण टिकने वाली है तो क्षणवर्ती है इसलिए अनंतर पूर्व क्षणवर्ती इतना कहा हमने तो ये किसकी बात चल रही है क्षणिक उपादान की। देखो क्षणिक उपादान इसके हम भेद देख रहे हैं तो इसके क्षणिक उपादान में हम दो देखेंगे क्षणिक उपादान एक तो जो पर्याय बनी वो और उसके पहले वाली पर्याय तो पहले वाले पर्याय को क्या कहेंगे अनंतर पूर्व कितने समय वाली है वो एक क्षण वाली इसलिए क्षणवर्ती यानी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती ये किसका भेद है क्षणिक उपादान का इसलिए क्या कहेंगे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती क्षणिक उपादान इतना पढ़ेंगे देखो इसमें से पढ़ेंगे द्रव्य क्षणिक उपादान कारण दो प्रकार का होता है द्रव्य और गुणों में जो पर्यायों का प्रवाह क्रम अनादि अनंत चला करता है पर्याय कभी रुकते हैं ना बीच में द्रव्य थोड़ा आराम तो करता होगा तो निरंतर परिणमन चलता है निरंतर एक के बाद दूसरा निरंतर इसको कहते निरंतर
एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसा निरंतर चल रहा है। पहली पर्याय, पहली तो कहीं किसी पर्याय को पहली कह ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो अनादि से ही है। कभी ऐसा नहीं कि उसका शुरू था। तो समझो हम मान लेते दसवीं पर्याय से, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, तो ये चौदहवीं यहाँ कार्य हुआ, उसके पहले कौन सी थी, तेरहवीं, इसको क्या कहेंगे, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और ये किसका भेद है, क्षणिक उपादान, यानी इसका इतना लंबा नाम, क्या, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान। और ये कारण का भेद है, फिर कारण में आगे लिखेंगे, ख्याल है ना। देखो इसलिए यहां से पढ़ते, द्रव्य और गुणों में जो पर्यायों का प्रवाह अनादि अनंत चला करता है, उस प्रवाह क्रम में, यानी पर्याय 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 ऐसा चलता रहता है, उस पर्याय प्रवाह पर्याय के क्रम में अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है और अनंत उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। ये जो 14वां नंबर की हमने देखी, ये यहाँ तो कार्य हुआ और ये उसकी पूर्व पर्याय, 13 नंबर की वो पूर्व पर्याय और 14वां नंबर की उत्तर पर्याय, पूर्व यानी पहले वाली और उत्तर यानी नेक्स्ट वाली, यानी अभी जिसकी बात चल रही, इसकी अपेक्षा ये उत्तर पर्याय है, भविष्य पर्याय है ना इसकी, ये पहले वाली और ये उत्तर वाली, तो इसका नाम क्या रखा हमने, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान, और ये अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। अब ये पर्याय यहाँ यही अभी क्यों हुई, 14 नंबर की पर्याय 14 नंबर पर ही क्यों हुई, तो इसे द्रव्य में ही, यानी उस पर्याय में ऐसी योग्यता है कि वो उसी समय प्रकट हो, उसमें ऐसी योग्यता नहीं है कुछ 13वें नंबर में प्रकट हो, उसकी ऐसी पर्याय ऐसी योग्यता नहीं है कि वो बाद में 16वें नंबर पर प्रकट हो, तो अपने अपने समय पर प्रकट होए ऐसी उस पर्याय में ही ताकत है। वो द्रव्य में ही ऐसे अनादि अनंत सारे पर्यायों के जो जो योग्यता रूप धर्म पड़े हैं, तो अपनी कौन सी पर्याय कौन से समय पर हो ऐसे पूरे सारे योग्यता रूप धर्म उस द्रव्य में विद्यमान है। द्रव्य में अनादि अनंत इतनी सारी पर्याय है, मान लो यहाँ से, तो एक 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 समय पर कौन सा कौन सी पर्याय होगी, वैसा वैसा धर्म वहाँ है। तो हम ये पर्याय यहाँ पर क्यों हुई, तो हम कहेंगे इस पर्याय की इसी समय होने योग्य योग्यता थी, यह पर्याय अन्य समय में होवे ऐसी उस पर्याय में ही योग्यता नहीं है, तो हम उसको कहते तत् समय की योग्यता। तत् समय की यानी वो काल की योग्यता नहीं है, वह पर्याय उसी समय हो ऐसी उस पर्याय की योग्यता। हम तत् समय की योग्यता नहीं, वो काल की योग्यता समझते, ऐसा नहीं है, पर्याय की उसी समय हो ऐसी पर्याय की योग्यता, ऐसी द्रव्य में ही ऐसा उसका धर्म, क्योंकि द्रव्य तो पर्याय, पर्याय और द्रव्य तो कोई ऐसी दो भिन्न चीजें नहीं है, अभेदी है ना, ये द्रव्य में कहो या पर्याय में ही ऐसा धर्म है ऐसी योग्यता है कि वो उसी समय में प्रकट हो, तो उसको कहते हैं तत् समय की योग्यता। तो अभी इसको दो बार फिर पढ़ते, देखो क्षणिक उपादान कारण दो प्रकार का है, एक क वाला फिर पढ़ रही हूँ मैं, द्रव्य और गुणों में जो पर्यायों का प्रवाह क्रम अनादि अनंत चला करता है, उस प्रवाह क्रम में अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है और अनंत उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। अभी वो दोनों में कारण कार्य भाव लगाया, देखो पहले तो हमने उस गुण को या द्रव्य को कारण कहा था, अब क्या कह रहे, ये 13 नंबर की पर्याय वो कारण है और 14 नंबर की पर्याय वो कार्य है। क्यों, क्योंकि इसके पहले ये पर्याय हुई ना, इसके पूर्वक हुई, इसलिए इसको कारण कहा और इसको कार्य कहा। घड़ा बना, परंतु ये घड़ा बना उसके पहले यहाँ माटी का वो पिंड था, गोला, मिट्टी तो थी, पर ये घड़ा कब बना, ये पिंड के बाद वो घड़ा बना, इसलिए हम ये माटी को अभी त्रिकाली में रखेंगे। तो इसके पूर्व की पर्याय क्या है, क्या थी, पिंड रूप, इसलिए इसको कारण, क्योंकि ये अभाव रूप, ये पिंड के बाद घड़ा ही बनेगा, उपादान तो कारण ही है, द्रव्य तो त्रिकाली उपादान में होगा। अब इस पर्याय के पहले वाली जो पर्याय है उसको हम क्षणवर्ती कारण कहेंगे। हाँ, कौन से स्वयं के लिए? पिंड है, इसके लिए पिंड क्यों बना इस समय? क्योंकि इसकी उस समय की योग्यता, और इसका त्रिकाली उपादान भी मिट्टी ही है। नहीं नहीं, स्वयं के लिए वो क्षणिक उपादान का, कौन सा आपका समय की योग्यता, परंतु इसका भी त्रिकाली उपादान क्या है, ये भी पर्याय है, तो इसका भी त्रिकाली उपादान वो द्रव्य ही है। हाँ, ये तो कारण पूर्वक कार्य होता है, क्योंकि हमको दो भिन्न समयों की बात करते हैं, इसलिए हमने कहा कि 13 नंबर के पर्याय कारण का, 14 नंबर के पर्याय कार्य थे। अब एक ही समय में घटाना है इसको, तो एक ही समय में घटाना है तो क्या कहेंगे, ये तो थी, परंतु यहाँ क्या हुआ, घड़े का उत्पाद हुआ और पिंड का व्यय हुआ यहीं पर, क्योंकि यहाँ तो पिंड था और यहाँ पिंड नहीं है, यहाँ पिंड उत्पाद रूप था, यहाँ पिंड व्यय रूप है, तो एक ही समय में इसका उत्पाद और इसका व्यय है। तो हम एक ही समय पे बात कहेंगे कि ये जो व्यय है ना, ये इसका कारण है, ऐसा कहेंगे। पिंड का व्यय और घड़े का उत्पाद एक ही समय की बात है, तो हम क्या कहेंगे, पिंड रूप से व्यय और घड़े रूप से उत्पाद, यानी वहां ऐसा लेंगे, मिट्टी का पिंड रूप से व्यय और मिट्टी का ही घड़े रूप से उत्पाद एक ही समय का कार्य है, तो इसको भी हमने कारण कहा। फिर हमने कहेंगे, अरे अभाव रूप तो कोई कारण होता है, जो स्वयं मिटे वो दूसरे को क्या उत्पन्न करे, शास्त्र में क्या कहते, अरे पूर्व पर्याय को तो आपने कारण कहा, परंतु पूर्व पर्याय स्वयं व्यय होने वाली है, तो जो स्वयं नष्ट हो वो दूसरे को कैसे उत्पन्न करे, तो फिर सच्चा कारण क्या है? तो अब कहाँ देखना रहा, जो पर्याय उत्पन्न हुई उसी की तरफ देखो, तो ये पर्याय यहाँ उत्पन्न हुई क्यों, अपने से उत्पन्न हुई है, उस पर्याय में ही ऐसी ताकत हो वो अपने समय पर उत्पन्न हो। तो अभी कहाँ कहाँ देखना पड़ा हमको, देखो पहले तो हमने जब घड़ा बनना था तो हम कहाँ देखते थे, कुमार की ओर ही देखते थे, हमको क्या लगा था, कुमार है तो कार्य बनेगा, कुमार ही पूरा कार्य बनाने वाला लगता था, घड़ा कौन बनाता है, तो हमने कहा कुमार, तो हमने कहा बनाओ, तो कुमार बोला माटी लाओ, अरे हमने तो सोचा तुम ही बनाते हो, तो माटी के बिना नहीं बनता, तो हमको माटी के पास जाना पड़ेगा, ये त्रिकाली उपादान यहाँ पड़ा है, तो हमने कहा अरे ये तो अनादि से पड़ा है माटी, तो घड़ा क्यों नहीं बन रहा, तो ये तो त्रिकाली उपादान है, वो कौन से किसमें से घड़ा बनेगा उसको बता रहे, तो इस द्रव्य में से ही घड़ा बनता है, इसलिए हमने इसको त्रिकाली उपादान, तो अभी क्या कार्य कब होगा, हमें तो आकुलता है ना कार्य करने की, कार्य कब होगा, तो कहते कि इसमें तो अनादि अनंत पर्याय चल ही रही है, इस विशिष्ट माटी में अनादि अनंत पर्याय चल रही है, जब इस माटी की पिंड रूप पर्याय होगी उसके बाद वो घड़े रूप पर्याय होगी, तो त्रिकाली उपादान के बाद हमने वो पूर्व पर्याय अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय 13 नंबर वाली पर्याय उसको हमने कहा ये कारण है, क्षणिक कारण है, क्षणिक उपादान कारण है, और ये कार्य हुआ तो हमको पूर्व पर्याय की ओर हमने देखा, तो देखते तो क्या है कि वो व्यय होगी उसके, इसका व्यय और इसका उत्पाद एक ही समय की बात है, तो फिर आचार्य करते ये तो व्यय हो रही है, जो स्वयं व्यय है वो कैसे उत्पाद करे, तो फिर कहाँ कहाँ देखना रहा, तो नियामक कौन होगा, कार्य का नियामक कौन होगा, तो जो पर्याय उत्पन्न हुई वो उसी की अपनी योग्यता के कारण उत्पन्न हुई है, तो इसको कहते कार्य का नियामक, इन्हें कब हुई वो, कब होगी पर्याय, जब उसकी योग्यता होगी तब, तो ये कब का उत्तर कौन देगा, पर्याय स्वयं देगी, कार्य स्वयं ये बताएगा कि उसके उत्पत्ति का कौन सा कार्य काल है, तो काल का नियामक कौन होगा, काल यानी काल ने वो पर्याय कब होगी, तो जब होनी है तब होगी, वो कौन निश्चित करेगा, वो पर्याय स्वयं निश्चित करेगा, ख्याल आया, क्योंकि कुमार इसको निश्चित नहीं करेगा, कुमार तो बस उपस्थित है, कुमार स्वयं घट रूप नहीं परिणमित हुआ है, इसे हम इसको उपादान कारण नहीं कहते। उपादान कारण किसको कहेंगे, तो मिट्टी स्वयं घट रूप परिणमित हुई है उसको उपादान कहा। तो उपादान तो हमेशा पड़ा है, कार्य क्यों नहीं हो रहा है, तो ये तो त्रिकाली उपादान। अच्छा फिर बताओ इसका क्षणिक उपादान कौन है, तो पूर्व पर्याय, जिसको हमने अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान इतना लंबा लंबा नाम लिया, तो ये है इसका व्यय होकर कार्य होगा। अरे पर व्यय के ऊपर दृष्टि रखने से वो व्यय रूप अभाव रूप तो नहीं हम कारण बनेंगे, तो इसका नियामक कौन है, तो ये पर्याय स्वयं। तो पर्याय में इसी को कहते तत् समय की योग्यता, तो यही कार्य का नियामक है। तो हमें सम्यक दर्शन होगा तो देवशास्त्र गुरु तो नहीं करेंगे, हमारे अपने द्रव्य और गुण में ही होगा। तो हम तो अनादि से हैं, तो अनादि से तो सम्यक तो नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो कहते वो श्रद्धा गुण में होगा, परंतु वो पहले तो सारी पर्याय होगी, ये एक पर्याय पूर्व, उसके पूर्व की पर्याय, उसके पूर्व की पर्याय, उसके पूर्व की पर्याय, उसके पूर्व की पर्याय, सब एक एक पर्याय निश्चित है। तो क्या होगा, तो पहले देशना सुनेगा, उसके ऊपर विचार करेगा, वो धारणा में लेगा, यानी वो बराबर उसको याद करेगा, याद करेगा यानी घोकंपटी नहीं, वो बराबर समझेगा, तत्व निर्णय करेगा, बार बार उस पर विचार करते वो अंतर्मुख होते जाएगा, आत्मा की तरफ उपयोग ले जाएगा, वो करण लब्धि के परिणाम होगा। तो ये करण लब्धि का अंतिम समय है, वो है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। सम्यक दर्शन हुआ वो है उस समय हुआ ना, ये कार्य हुआ, क्यों हुआ, तो उसकी उसी समय होने की योग्यता वो किसमें पड़ी है, उसी पर्याय में पड़ी है। तो इसके लिए ये सारे अन्य चीजों से अपना लक्ष्य हटकर जब हम अपने स्वभाव की ओर लक्ष्य ले जाएंगे, क्योंकि पर्याय तो एक समय की है, हम उसकी तरफ कैसे देखेंगे, तो कहाँ देखना रहा कि ये पर्याय कौन सी, ये द्रव्य में ही है सारा, ये जो द्रव्य है उसी में कौन सी पर्याय कब होगी, ये सारा निश्चित है। तो ये पर्याय की तरफ देखते देखते ये समय दर्शन के पर्याय नहीं प्रकट होगी, द्रव्य की तरफ देखेंगे कि द्रव्य में तो सारे ही अनादि अनंत पर्यायों का क्रम पड़ा है, जैसा कि जैसा उसकी तरफ देखते रहेंगे। और जब निर्णय होगा किसी निमित्त के कारण या अन्य किसी के कारण मेरी पर्याय नहीं होगी, तो कहीं से भी दृष्टि हटकर अपनी ओर चली जाती है, तब समय दर्शन के पर्याय प्रकट हो जाते हैं। यानी ये निमित्त उपादान पढ़ना क्यों आवश्यक है, परावलंब की आज तक हमारी दृष्टि थी, क्योंकि जब पता चला कि निमित्त तो पड़ा है अनादि से, कार्य क्यों नहीं होता, तब तक हमने ऐसा सोचा जब निमित्त आएगा तब कार्य होगा, तो निमित्त की तरफ ही ताकते रहेंगे तो कार्य कभी होगा नहीं। उपादान की तरफ दृष्टि ले जाएंगे तो ये अपनी पर्याय योग्यता से ऐसी ही पर्याय सम्यक दर्शन की प्रकट होगी। कोई कहेगा हम यहाँ देखेंगे और समझो मिथ्या तो होगा, तो उसका निर्णय अभी सही नहीं है, ख्याल में आते ना, उसकी जिसकी पूर्व पर्याय ऐसी है उसकी उत्तर पर्याय ऐसी ही होगी। जो तत्व निर्णय करेगा उसको तो ये उपयोग अंतर्मुख होगा ही, जिसका उपयोग अंतर्मुख होगा उसको समय दर्शन होगा ही, ये विधि पूरी बताता है। पूर्व पर्याय पूर्व पर्याय पूर्व पर्याय भी वो कौन सी पर्याय का अभाव पूर्व के हुए है ये सारा बताता, इसलिए वो पूर्व पर्याय को कारण और उत्तर पर्याय को कार्य कहा। अब यहाँ की भाषा में हम पढ़ेंगे, ये यहाँ के नाम जरा लंबे लंबे है ना, तो इसलिए ऐसा लगता है कि अरे अपने क्या समझ में कैसे आएगा। अभी जो हमने समझा उसी को अभी पढ़ेंगे हम पुस्तक में। ये फिर क वाला फिर पढ़ रही हूँ। द्रव्य और गुणों में जो पर्यायों का प्रवाह क्रम अनादि अनंत चला करता है, उस प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। इसे इस प्रकार भी कहा जाता है कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य कारण। उपादान में हमने द्रव्य को लिया था ना, तो हमने इसमें क्या कहे, ये अनंतर पूर्व को बताना है तो कैसे बताएंगे, ये पिंड पर्याय से युक्त मिट्टी कारण, यानी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य कारण। इतना लंबा चौड़ा नाम लेने में थकान लगती है, इसलिए शॉर्ट में हम लिख देते हैं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय या अनंतर पूर्व पर्याय। ऐसे लिखेंगे तो उसका अर्थ क्या हुआ, ये सारा लंबा चौड़ा समझ लेना। शॉर्ट फॉर्म तो कर सकते हैं, परंतु वहाँ ऐसा लेना, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य कारण है, क्योंकि द्रव्य तो हमेशा रहेगा, यानी उस पर्याय वाला द्रव्य मिटकर अभी नया पर्याय वाला द्रव्य होगा, यानी द्रव्य तो कायम रहेगा, पूर्व पर्याय चली जाएगी, नई पर्याय उत्पन्न होगी, इसलिए द्रव्य को कारण लिया। और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य कार्य है, ये अपेक्षा खाली अलग अलग है, पर्याय सहित वाला द्रव्य कहो या अकेले पर्याय कहो, बात एक ही समझाना चाहते हैं। उक्त संदर्भ में कार्तिकेय अपेक्षा का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। कार्तिकेय नाम के स्वामी आचार्य हो गए बड़े, उन्होंने ग्रंथ लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, उसमें से एक श्लोक देते हैं। पूर्व परिणाम युक्तम कारण भावेन वट्टदे दौवम उत्तर परिणाम युदम संचय कज्जम हवे नियमा। कज्जन कार्य होता है, नियम से होता है, कब होता है, पूर्व परिणाम युक्त द्रव्य का, यानी द्रव्य पूर्व परिणाम रूप से वर्तता है और उसका व्यय होकर उत्तर परिणाम रूप से द्रव्य हो जाता है, तो कहते हैं अनंतर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य कारण रूप से परिणमित होता है, यानी वो कारण होता है, और अनंतर उत्तर परिणाम से युक्त वही द्रव्य नियम से कार्य होता है। यानी जब जब हम किसी भी दो पर्यायों की बात करेंगे, पहले समय वाली और दूसरे समय वाली, तो क्या कहेंगे, पूर्व पर्याय है वो कारण है और अगली वाली उत्तर पर्याय है वो कार्य है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सिद्धांताचार्य पंडित फूलचंद जी लिखते हैं, जो अनंतर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य है, विशिष्ट कहो या युक्त कहो, यानी अनंतर पूर्व पर्याय से सहित वाला जो द्रव्य है उसकी उपादान संज्ञा है, यानी उसका नाम है उपादान, और जो अनंतर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य है उसकी कार्य संज्ञा है, यानी उसका नाम है कार्य। क्योंकि हम अभी इस 14वें नंबर की बात कर रहे हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तो पूर्ववर्ती जो है 13 वाला, यानी द्रव्य जब 13वें पर्याय पर था तो ये द्रव्य कारण, और ये 14वें नंबर का पर्याय हुई अब, इसका तो व्यय हुआ तो अब ये कार्य हुआ, तो ये कार्य और वो वाला द्रव्य कारण। कारण होगी, हाँ अगली अगली कंप्लीशन होता ही नहीं कभी कार्य, हाँ फिर भी 15वां नंबर होगा ही ना, 14 नंबर तक एक क्षण मात्र भी टिकने वाला है, वो कार्य भी नष्ट हो जाएगा, ये कार्य एक समय का ही है, 15वें नंबर का कार्य होगा तो इसका व्यय हो जाएगा, वो कारण बनेगा अगली पर्याय का। हर पर्याय अपने उत्तर पर्याय का कारण और अपने पूर्व पर्याय का कार्य, यानी पर्याय में ही कार्य कारण संबंध लगेगा। हाँ, यानी हमें ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य संपन्न हुआ, चलो हम निश्चिंत हो गए कि घर में शादी हुई थी, कार्य हुआ, चलो कार्य हो गया, हाँ? तो ये कार्य कभी समाप्त, कब समाप्त होगा कार्य, द्रव्य का कार्य कब समाप्त होगा, सिद्ध बनने के बाद चालू रहे, हाँ बराबर, बहुत अच्छा, हर समय पर्याय चलती 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 रहेगी। तो हमने 47 शक्ति में एक शक्ति पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, अकार्य कारण। तो आत्मा किसी का कारण भी नहीं और किसी का कार्य भी नहीं, ऐसा लिखा, उसका अर्थ क्या, यहाँ तो देख रहे कि हर पर्याय कारण भी है और कार्य भी है, और वहाँ लिखा था किसी का कारण भी नहीं कार्य भी नहीं, इसमें कुछ डिफरेंस ख्याल में आता है, बिल्कुल अच्छा है। हाँ देखो, कोई भी एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का न कार्य हो सकता है न कारण हो सकता है, और वहाँ तो द्रव्य की बात है, पर्याय की बात नहीं है। द्रव्य स्वयं कहाँ से कहाँ तक है, अनादि से अनंत काल तक, उसको किसने उत्पन्न किया है, छह द्रव्य जो स्वतः सिद्ध है ना, पंचाध्याय में जो आता है स्वतः सिद्ध है, तो इसी ने किसी ने उत्पन्न नहीं किया। जिसको उत्पन्न नहीं किया वो कब से होना चाहिए था? अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत। अगर कार्य होगा तो एक एक समय का होगा, कार्य होगा तो सादी शांत होगा, और जो है ही अनादि से वो अनादि अनंत, यानी जो स्वतः सिद्ध है, जो है वो अनादि अनंत है। उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, यदि उत्पन्न नहीं कोई कर सकता तो उसको नष्ट भी कोई नहीं कर सकता। यानी मैं अनादि से हूँ, मैं अनंत काल हूँ। अपनी पर्याय जितना अगर हम अपने को माने तो पर्याय तो कार्य है, और वो कितने क्षण टिकने वाला है? एक एक समय, एक समय की पर्याय रूप अगर हम अपने को माने तो अगले समय तो नष्ट होकर अन्य पर्याय होगी, तो हमें दुख होगा कि नहीं होगा? यदि हम अपने को मनुष्य रूप समझे, यहाँ इतने पर्यायों में यहाँ तक तो मनुष्य मनुष्य पर्याय चल रही, और समझे यहाँ से देव पर्याय होगी, और फिर यहाँ से फिर कोई तिर्यंश पर्याय होगी। हम अकेले पर्याय जितना ही अपने को मानेंगे तो क्या होगा? पर्याय नष्ट होने पर अपना नाश मानेंगे। ये रोना धोना क्यों आता है हमको? सामने मरण दिखता है तो क्यों इतने आकुलता होती है? हम अपने को मनुष्य जितना ही मानते हैं, वो तो परद्रव्य की पर्याय रूप मानते हैं ना, तो और ज्यादा अनुको आकुलता होती है। शरीर की पर्याय को हम अपना माना, अपने पर्याय में भी आत्मबुद्धि अभी वहां तक तो भी नहीं पहुंचे क्या? शरीर को ही हमने मैं माना, तभी शरीर तो जवान रहा बहुत साल तक, तो हमने कायम के लिए अपने को जवान ही मान लिया। जब बुढ़ापा आने लगा तो बहुत आकुलता आने लगी, क्योंकि हमने अपने को क्या शरीर रूप माना था या मनुष्य पर्याय रूप माना था। अब इसका नष्ट होने का समय आया तो क्या होगा मेरा? हाय मैं नष्ट हो गया। जो इतना मानेगा कि अरे ये पर्याय का अभाव होकर अगली कोई ना कोई तो पर्याय रूप से तो हमेशा विद्यमान ही रहेंगे, तो हम हमेशा विद्यमान रहने की ओर उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होगा। यह मैं तो अनादि अनंत हूँ ऐसा ख्याल में आएगा, तो एक पर्याय नष्ट होकर दूसरी उत्पन्न होगी तो आकुलता होगी का नहीं होगी? अपने को पर्याय रूप ही मानने से पर्याय का नाश होने से अपना नाश मानता है। अपने को अगर त्रिकाली रूप मान लिया जाए तो क्या होगा? नहीं होगा दुख, क्योंकि पर्याय आने वाली आएगी और चली जाएगी, हमें क्या उसमें, हम तो कायम है। तो सुख कहाँ से आना, बाहर से लाना पड़ेगा। ये मान्यता अभी धारण करो अभी सुख उत्पन्न होगा, ये मान्यता अभी धारण करो अभी समय दर्शन होगा। ये समय दर्शन कोई आकाश का फूल नहीं, वो कैसा जाए और कैसा तोड़ के लावे। ऐसा अपना स्वरूप है ना, अपना स्वरूप पहचानना, यही तो है ना समय दर्शन। हम त्रिकाली आत्मा थे और हमने अभी आज तक क्या ये सारे शरीर में ही यह मैं हूँ मान लिया था, तो समझो इसका और इसका संयोग यहाँ तक था, तो इसको छूटने का समय आया तो हमने मान लिया चलो हमारा ही अंत हो गया। शरीर के परमाणु भी रहे और हम भी रहे, हम अलग जगह गए, वो शरीर का अलग परिणमन हुआ, क्योंकि उसका परिणमन तो उसके द्रव्य के कारण होगा कि हमारे कारण होगा, तो हम उसको टिकाना चाहते और उसके लिए उपाय भी बहुत सारे करते, और फिर ऐसा करना क्या नहीं करना, वैसा करना क्या नहीं करना, बहुत उलझने हम उसमें उलझते रहते हैं। देखो अपना स्वरूप नक्की करना है, निश्चित करना है और अपने को पहचानना है और कुछ नहीं करना। जो कार्य होते हैं ना वो होते होने योग्य होते जाएंगे। हमें तो चिंता तो औरों की है, क्योंकि हम भले है ना, ये आप संस्कृत में उक्ति आती है क्या, परोपकाराय सताम विभूतया। जो साधु लोग, साधु यानी वो मुनि लोग नहीं, सज्जन लोग जो है वो परोपकार के लिए जीते। हम तो इतने परोपकारी है कि अपने को तो भूल ही जाते हैं और पर का उपकार करते हैं, ऐसी मिथ्या मान्यता करते। हाँ, पर हमने किसको लिया? अकेले आत्मा को लिया। देखो मैं ऐसा कहने पर आंख बंद करो और मैं ऐसा कहो, सामने कौन आता है? मैं के सामने ये शरीर वाला मैं दिखता है कि वो आत्मा मैं दिखता है? यही पर गलती है, ये मैं मानने में ही गलती है। और समय दर्शन और किसी का नाम नहीं है, मैं को पहचाना, ये मैं कौन है इसकी बराबर पहचान करनी है। मैं हमने अकेला मैं था, तो मैं को अगर मैं मानता तो कोई दुख नहीं था, कुछ नहीं था, इतना ही मैं हूँ। अभी इस मैं के साथ क्या क्या लगा है, द्रव्य कर्म है, नो कर्म है, भाव कर्म है, सारे है, ये सारों को मिलकर मैंने मैं माना। शरीर को भी, राग द्वेष को भी और जड़ कर्म को भी, तो इतना सारा मैं के खाते में लेकर मैं ये सारा मैं हूँ ऐसा मान के, तो इसके लिए किसको किसको निकालना पड़ेगा? सबको निकालना है ना? हाँ बस किसी को नहीं निकालना। अरे रहने दो ना अपने जगह पर, मैं निकालने वाला कौन है? छोटे ही है उससे। अरे भाई यही तो मान्यता है कि मुझे किसी को ना हटाना है ना किसी को जुटाना है। अरे मैं तो इतना सा हूँ, इसको मैं जानना है और ये मेरा सब इसमें ही है और किसी में मेरा कुछ है ही नहीं है। हमने ये सारे, ये कोई कहते नहीं मैं तेरा हूँ, शरीर नहीं कहता मैं तेरा हूँ, वो शरीर वो आत्मा को मेरा नहीं मानता, उसके पास वो बुद्धि नहीं है। हम तो बुद्धिमान है ना, तो कुछ विशेष कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हमने ये सारा जो जो ज्ञान में है ना वो मारा, मेरा मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, ये चलता है ना। इसको कौन क्या कहते हैं, हम व्यवहार में ऐसा कोई करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? जो अपनी चीज भी अपनी और पराई भी अपनी। तो उसको चोर कहेंगे कि क्या कहेंगे? साव कहेंगे। और यहाँ तो ये अनादि से ही मांगता, अरे मैं इतना सा हूँ परंतु ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मैं ही हूँ, ये सारा मैं ही हूँ, इतना माना। तो जितना मैं हूँ उतने को मैं मानना है और क्या है? इसी का नाम सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं है। इतना सरल है कि और कुछ कहीं लेके लाना है कहीं से, कुछ बाहर से, या किसी को हटाना है, क्या करना है? मान्यता जो गलत थी वो सही मान्यता, और वो सारे हमें बता रहे हैं शास्त्र में, तो यही तो बात आती है कि देख जीव ये तेरा स्वरूप है, तू मान और अभी सुखी हो जा। नगद का धंधा है यहाँ, उधारी का नहीं, ये क्रेडिट का काम नहीं चलता यहाँ। धर्म के बाद पुण्य करना है, पुण्य का फल पाना है तो वहाँ क्रेडिट चलेगी। यहाँ अपनी आपकी कितनी क्रेडिट चलती, 3-4 महीने की चलती होगी। ये पुण्य में तो बहुत सागर चले जाते तब आपको पुण्य का फल मिलेगा, और वो भी पुण्य जो बांधा था वो पुण्य रूप से रहेगा ऐसा कोई भरोसा नहीं है। परिणाम पलट जाएंगे, सारा पुण्य वो पाप रूप संक्रमित हो जाएगा, सारा बेकार चला जाएगा। यहाँ क्या कहते देखो, जो अनंतर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य है उसकी उपादान संज्ञा है, और जो अनंतर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य है उसकी कार्य संज्ञा है। ये तो क वाले बात हो गई। अब ख दूसरा पॉइंट बता रहे, यानी हमने जिसको कहता है तत्समय की योग्यता, एक तो ये हमने एक कारण देखा कौन सा, पूर्व पर्याय वाला। अब जो कार्य हुआ उसी पर्याय को हम कारण कहेंगे, उस समय की पर्याय की उसी समय होने रूप योग्यता क्षणिक उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है। यानी बेटा पहले नंबर से पास हुआ तो उस बेटे की ही ऐसी योग्यता है ना पहले नंबर के पास होने की। अब यह तो ये हम टाइम पर नहीं घटा रहे हैं, समझो कुछ कार्य हुआ, आम पका तो क्यों पका? तो पहले तो हम निमित्त की तरफ देखेंगे, इन्होंने उसको ऐसे बराबर रख दिया पाल में इसलिए पक गया। फिर हमको पता चला नहीं आम में कोई ऐसी शक्ति है कि उसमें वो पकने रूप शक्ति है, तो वो तो आम तो हमेशा ऐसा था, अभी क्यों पका? तो कहते वो उसकी पूर्व पर्याय का व्यय होकर अभी की पर्याय उत्पन्न हुई, तो ये पर्याय अभी क्यों हुई? तो कहते उसी समय उसके होने की योग्यता है। सोना तो पड़ा था हमारे घर में, अभी उसकी बंगड़ी हुई, क्यों? क्योंकि इसी वक्त उसमें बंगड़ी रूप होने की योग्यता है या बंगड़ी के अभी होने रूप योग्यता है, तो ये इसको कहते उसी समय होने की योग्यता उसी पर्याय में है। उस समय की पर्याय की उसी समय होने रूप योग्यता क्षणिक उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है। यानी क्या कहा, जो पर्याय घटी वही कारण और वह पर्याय वही कारण कार्य, दो अलग अलग पर्याय में नहीं। जो कार्य हुआ घड़ा बना तो घड़ा बना यही कारण और घड़ा बना यही कार्य, उसी समय घड़े में घड़ा बनने की योग्यता थी इसलिए वो जो कार्य हुआ वो स्वयं ही कारण है और वो स्वयं ही कार्य है। यानी योग्यता को कारण कहा और कार्य को, जो कार्य हो ना घड़ा बना, वो उसका कारण, यानी योग्यता से वो कार्य हो गया। तो किसकी योग्यता? उसी पर्याय की योग्यता, अन्य पर्याय की नहीं। इसीलिए हमें तो ऐसा अभी तक क्या देखा था हमने, कुमार आया तब कार्य हुआ, ऐसा कहा ना। तब हमको कहाँ देखना पड़ा, मिट्टी से ही हुआ, परंतु मिट्टी तो पड़ी थी तो अभी घड़ा क्यों बना? तो ये घड़े बनने की जो योग्यता थी वो इसी समय बनने की योग्यता थी, इसलिए अभी कार्य हुआ। इस निमित्त उपस्थित था कुमार, उसके समय में अपने कारण से आया, कुमार में स्वयं में ऐसी इच्छा हुई, तो हमको उसके तरफ नहीं देखना है, हमको सच्चा कारण क्या है उसकी तरफ देखना है। यानी निमित्त हटेगा, इन्हें अपने मान्यता में से हटेगा, वो वहाँ कार्य की वहाँ उसका उपस्थिति है, ऐसा नहीं कि वो कुमार आए नहीं बाहर और वो घड़ा अपने आप ही मिट्टी में से ऐसा बन गया। बना तो ऐसा ही, परंतु उस समय कुमार की उपस्थिति थी, उसके जो शरीर की या उसकी जो इच्छा की है, जो वहाँ पर्याय हुई वो उसके अपने कारण हुई, और घड़ा बना वो उसके अपने कारण बना। ऐसा जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो इस विश्व में जितने कार्य हो रहे हैं वो अपने अपने से हो रहे हैं। निमित्त जिसको हम कहते हैं ना, निमित्त कार्य, वो भी अपने स्वयं के कार्य के लिए उपादान है, उसका भी अपना अपना कार्य हो रहा है वहाँ। हम क्या कहेंगे, अरे मिट्टी सारा कर रही तो कुमार ने क्या किया, ऐसा लगता है ना, प्रश्न क्या पूछेंगे, मिट्टी ने ही अपना सारा कार्य किया तो कुमार ने क्या किया, तो पैसा उसको क्यों देने का, क्यों? ये सारा लोक व्यवहार जो हमारा निमित्त की भाषा में, निमित्त के कथन में, और ये सारा व्यवहार उसी में तो होता है, क्योंकि उसी को हमने सच्चा कारण मान लिया। तो जब जब कार्य होगा, जब जब कोई भी पर्याय होगी, तो उस पर्याय की उसी समय होने की योग्यता उसी पर्याय में पड़ी है, इसलिए ये पर्याय स्वयं ही कारण है और वही उसका कार्य भी है। इस प्रकार अभी इसी को दोहराते थे, उपादान कारण तीन प्रकार का हो गया, जो इस प्रकार है, त्रिकाली उपादान कारण, दूसरा है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप क्षणिक उपादान कारण, क्योंकि जो पर्याय हुई ना अभी 14 नंबर की, उसी समय 13 नंबर की पर्याय का व्यय था, इसलिए वो व्यय को कारण का, और तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण, यानी 14 नंबर की पर्याय 14वें नंबर पर ही हो ऐसी योग्यता उसी पर्याय में विद्यमान है, इसलिए तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण का। ये समय की योग्यता है, वो काल की योग्यता इस पर नहीं जाना, उस पर्याय की उसी समय होने की योग्यता उसी पर्याय में है, काल में नहीं है वो। ऐसा नहीं कि 8:02 पे होने वाली है तो ये 8:00 वो घड़ी के घड़ी पर वो निर्भर है, जब वो घड़ी वहाँ आएगी वो कार्य अपने आप हो, वैसे नहीं, उस पर्याय की उसी समय होने की योग्यता उस पर्याय में है। ये बाह्य काल की यहाँ बात नहीं है, तब समय की जब कहेंगे तब क्या नहीं, क्या बताना चाहते। क्षणिक उपादान के नाम लंबे होने के कारण उन्हें निम्नांकित यानी नीचे बताए हुए संक्षिप्त नामों से यानी शॉर्ट फॉर्म में अभिहित किया जाता है, यानी बताया जाता है। ये भाषा ऐसी है ना हमारी रेगुलर हिंदी भाषा से, हमें तो बम्बई या हिंदी कहते, वो लोग कहते आप कैसी हिंदी बोलते हैं, तो इसी को शॉर्ट में क्या बताया, अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता, इतना ही लिखेंगे। परंतु हमें जानना चाहिए कि बहुत लंबे नाम के ये शॉर्ट कर दिए। अभी ये जो उसका पूरा चार्ट बताएंगे कल देखेंगे हम इसको, यहाँ देखा ही है ना हमने, इसमें बताएं कि नहीं बताएं। उपादान कारण के दो भेद, एक त्रिकाली और क्षणिक, क्षणिक के भी दो भेद, अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता, इसको फिर कल हम दोहराएंगे। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक न हो।